महाबंध पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए हम पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58 पर आ गए 58। उत्तर प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग बंध के सन्निकर्ष की प्ररूपना चल रही है। अब मार्गणाओं में देखते हुए हमारी योग मार्गणा की बात चल रही है, उसमें अभी हम आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों में देखेंगे। पहले इसका गुणस्थान नक्की करना है, वह छठा गुणस्थान। तो उसमें 7 कर्मों का भंग अनुदिश के समान है। अनुदिश तो चौथे गुणस्थान वाले थे, वहां तो 8 कषाय थे, यहाँ तो केवल संज्वलन लेना है, क्योंकि आहारक मिश्र में है, उसमें विशुद्धि संक्लेश वहां की जो जो होगी, हाँ वहां तो उसका जघन्य बंध होगा। क्योंकि मोहनीय में बंधने वाली क्या है, 4 संज्वलन है, पुरुष वेद है। जब हाँ जघन्य कहना है तो हास्यरति का जघन्य होगा उसके साथ, बाकी के साथ केवल अरति शोक का जघन्य अलग होगा, उसके साथ बाकी सब अनंत गुणा बंधेगी। ख्याल में यही बात, हाँ। इतनी विशेष है कि 8 कषायों को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। 59 पेज पर है अभी हम। देव गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब इनकी तो देवगति ध्रुव बंधी है और उसके साथ बंधने वाली प्रकृतियां भी ध्रुव बंधी है, और इसका जघन्य बंध संकलेश में होगा। तो वहां पर पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर संस्थान, वैक्रिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु त्रिक, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, सुभग सुस्वर आदेय और निर्माण का नियम से बंद करता है। और ये सब प्रशस्त प्रकृतियां है, वो जघन्य भी बंधेगी अजघन्य भी, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह 6 स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब छोड़े कौन से, तो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात और बाकी जो 80 आदि 3। तो कहते अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि देवगति का जघन्य है ना, तो संक्लेश है, इसलिए नियम से लिया, अस्थिर आदि 3 नियम से लिए। वैसे तो सामान्य से स्थिर से दोनों का विकल्प है वहां पर, हाँ। तो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क विशुद्धि में जघन्य बंधेगी और अस्थिर अशुभ अयश कीर्ति मध्यम परिणाम में जघन्य बंधेगी, और ये संकलेश वाला जीव है इसलिए वे यहाँ अनंत गुणा अधिक बनती है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, वो भी प्रशस्त प्रकृति है, संकलेश में जघन्य बंधेगी। यदि अजगण्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तत्प्रायोग्य देवगति आदि और तीर्थंकर प्रकृति की मुख्यता से परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। देवगति आदि के देवगत्यानुपुरी आदि वगैरह, यानी सभी का आपस में ऐसे ही समझना, इतना ही चाहिए। किंतु इनमें से किसी एक के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव शेष का यथासंभव बंध करता है, वह जगन्य अनुभाग बंध भी करता है और अजगन्य अनुभाग बंध भी करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्कर उपघात का भंग ओघ के समान है, यानी इसका जगन्य करने वाला विशुद्ध वाला होगा। वहां जो देवगति वगैरह भी और स्थिर शुभ शुभ यश कीर्ति भी, सभी प्रकृतियां इनको छोड़कर अनंत गुणा अधिक बन देगी, इसलिए इतना ही कहकर छोड़ दिया। ये समझ में है ना अप्रशस्त वर्ण चतुष्कर की बात, स्थिर प्रकृति के। अब ये तीन जो जो युगल है वो मध्यम परिणाम में जगन्य बनती है, तो वहां बनने वाली प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी कैसे अनंत गुना बढ़ेगी अधिक। तो स्थिर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव देवगति संयुक्त प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुना अधिक होता है। क्योंकि प्रशस्त वाले तो संक्लेश में जगन्य है, मध्यम में वो अनंत गुणा हो गए, अप्रशस्त वगैरह वो तो सर्व विशुद्धि में जगन्य है, मध्यम में अनंत गुणा हो गए। अब स्थिर लिया तो उसके साथ शुभ अशुभ और यश अयश कीर्ति का कदाचित बंद करता है, क्योंकि स्थिर है तो अस्थिर नहीं बंधेगा, परंतु अन्य दो का विकल्प हो सकता है, वो भी मध्यम परिणाम में बनती है जगन्य। इसलिए कहते हैं यदि बंद करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। तीर्थंकर प्रकृति का भी जगन्य है वो संक्लेश में है, यहाँ पर वो मध्यम परिणाम में अनंत गुणा अधिक होगा। क्या हुआ, कुछ विचार कर रहे हैं? इसी प्रकार अस्थिर शुभ अशुभ यश कीर्ति और अयश कीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। उस एक एक को लेकर ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। ये आहार कायोगी की बात हो गई पूरी। कार्मण कायोगी जीवों में सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है, यहाँ तो आयु बनती नहीं है, छह होना चाहिए। हाँ सत्तनम लिखा है, वो सब जगह सत्तनम सत्तनम लिखा है ना, यहाँ पर भी लिख दिया। छह कर्मों का भंग होना चाहिए, नीचे हिंदी में तो छह लिखो, वो छन्नम कहेंगे क्या कहेंगे। छो के लिए क्या लिखते, छन्नम लिखेंगे ना। इसमें मिलेगा, सूक्ष्म सांप्राय में मिलेगा। छन्नम लिखो अभी, बाद में देखेंगे। अभी यहाँ कर्मण का युग जीव में छह कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है, आयु बनती नहीं इसलिए बाकी छह नाम कर्म को छोड़ा। अब तीर्यंच गति मनुष्य गति, छह चार जाति छह संस्थान छह सहनन दो अनुपूर्वी दो विहाय गति स्थावर आदि चार और सिर आदि छह युगल का भंग ओघ के समान है। देखो तीर्यंच गति सातवें नरक का नार की बांधेगा, कारमान का योग में सर्व विशुद्ध वाला वो बांधेगा, वही बांधता है ना, वो एक ही गति बांधते। मनुष्य गति मध्यम परिणाम में, ये सभी भी मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है। तो ये जब मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है तो बाकी सभी वहां पर अनंत गुणा अधिक बनेगी। कारमान कायुग में तीर्यंच गति का भी जहां जघन्य है वहां प्रशस्त तो अनंत गुणा अधिक बनेगी बनेगी, परंतु अप्रशस्त भी अनंत गुणा अधिक है, क्योंकि कारमान कायुग में अप्रशस्त का जघन्य सम्यक दृष्टि के होगा, उस अपेक्षा से सभी प्रकृतियां यहाँ अनंत गुणा अधिक बनेगी, इसलिए ओक के समान कह दिया। देवगति चतुष्क का भंग औदारिक मिश्र कायोगी जीवन के समान है, क्योंकि ये समय दृष्टि होना चाहिए और देवगति बांधने वाला समय दृष्टि मनुष्य तीर्यंच है, इसलिए वो औदारिक मिश्र के समान वो बात घटित हो जाती है। जरा जोर से तभी क्या सामान्य देवों के समान बताए ना, निकालो मोहनीय का जब कैसा विचार करेंगे हम, मोहनीय का जगन्य कहाँ बंधेगा, समय दृष्टि को बंधेगा, पर मोहनीय में देखो मिथ्यात्व का जगन्य जिसके है, मिथ्यात्व का जगन्य हो रहा है वहां क्या क्या बांध रहा है, सोलह कषाय है, पुरुष वेद हास्यरति भैजगुप्सा वो भी उसका भी जघन्य होगा, उसका जघन्य नहीं होगा क्योंकि जो सम्य दृष्टि को बनती है मिथ्यात्व के साथ केवल अनंतानुबंधी जघन्य हो सकती है और बाकी अनंत गुण अधिक होगी। अब बाकी प्रकृतियां जो सम्य दृष्टि को जघन्य, कारमान का योग में गुणस्थान चौथा ही हो सकता है सम्य दृष्टि वाले के, उसके ऊपर तो नहीं होगा, तो मध्यम परिणाम में कभी नहीं होता, तत्प्रायोग विशुद्धि में होता है। उसको प्रतिपक्ष कहाँ है, अरतिशोक की मैं बात कर रही हूँ, आप हमेशा अरतिशोक के बाद में ऐसे ही पूछते हो। मध्यम परिणाम वहीं पर होता है जहाँ प्रतिपक्ष में शुभ अशुभ हो सकता है, तो वो भी समय दृष्टि को ही जगह नहीं होगा। निकालो देवों की बात निकालो, 50 पेज मोनी के बारे में पढ़ना है, नारकी के समान तो कई 30 समथिंग देखा था हमने, 39 पर था, मिला आपको 39 में। देखो 80 नंबर का पॉइंट, मिथ्यात्व का जगन्य तो अनंतानुबंधी का नियम से और जगन्य अजगन्य लिया, फिर 12 कषाय और 5 नौ कषाय का अनंत गुणा अधिक बताया, यानी उसमें पुरुष वेद हास्यरति भैजुगुप्सा को लिया, उसके बाद अप्रत्याखण और क्रोध के, अभी इसको अलग से नहीं लेना है क्योंकि यहाँ तो कोई उसका जगन्य कहाँ होगा, समय दृष्टि का होगा डायरेक्ट, तो वह अप्रत्याखण क्रोध के साथ अन्य 11 कषाय और 5 नौ कषाय वो जगन्य अजगन्य लिया, क्योंकि उसमें से जो कम अप्रशस्त है उसको लेना ना, अति अप्रशस्त वालों को क्योंकि वो बंधेगी नहीं ना, अति अप्रशस्त यहाँ पर विशुद्धि में वो बंधेगी नहीं। फिर स्त्रीवेद के साथ लिया, देखो उसका जघन्य, स्त्रीवेद का बंधन मिथ्या दृष्टि करेगा तो उसके जघन्य के साथ मिथ्या तो सोलह कषाय भय जुगुप्सा अनंत गुणाधिक होगा, उसके साथ हास्यरति अरति शोक दोनों बन सकते हैं अनंत गुणाधिक होते, क्योंकि हास्यरति को अरति शोक इसका जघन्य सम्यक दृष्टि के होगा, यानी हास्यरति का सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि और अरति शोक का तत्प्रायोग विशुद्ध सम्यक दृष्टि, यही तो अभी हमने बोला था, अभी आना अपने पेज पर। हाँ अरति के बोला ना मैंने, हाँ अरति के साथ वो जो समय दृष्टि को जघन्य है तो सर्व विशुद्ध में जिसका जघन्य है बारह कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा, अभी अरति शोक लिया इसलिए वहां पांच नौ कषाय नहीं कह सकते, एक को बता दिया, वहां तो हास्यरति बंधेगी नहीं, अरति के साथ शोक बंधेगा वो जघन्य बंधेगा। अभी आना अपने पेज पर, पेज नंबर 59, कारमान का योगी की बात चल रही थी ना, देखो तिरंज गति का वगैरह हमने देखा, ओक के समान यानी उसके साथ बनने वाली सभी अनंत गुणा वगैरह हुए, केवल उस मध्यम परिणाम में जो बनती है वही जघन्य अजघन्य का विकल्प होगा उसके साथ। देवगति चतुष्क का भंग औदारी की मिश्र वो भी अभी हमने देखा, सम्य दृष्टि मनुष्य तिरियंच के वो जघन्य होता है, तो जघन्य होता है तो संकलेश में जघन्य होगा, तो उसके साथ बनने वाली जो प्रशस्त प्रकृतियां है नहीं, कारबाण का योगी के लिए पंचेंद्रिय जाति का कैसा बंधेगा देवगति चतुष्क के साथ जो जघन्य है, फिर से देवगति का जघन्य कर रहा है कौन कर रहा है, समय दृष्टि सर्व संकलेश, और पंचेंद्रिय का सर्व जघन्य कौन करेगा, मिथ्या दृष्टि संकलेश वाला, तो अनंत गुणा बंधेगी ना, देखो निकालो औदारिक मिश्र निकालो, पेज नंबर 57 पर, एक दो तीन चार पांचवी लाइन लास्ट में शुरुआत होता है, देवगति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी उसके साथ बनने वाली सभी जो प्रकृतियां ली वो कैसे नियम से अनंत गुणा होगी, केवल इसके समान कौन सी होगी, व्यक्रिय शरीर अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्व, हाँ वो तो तीर्थंकर ऑप्शनल होगी ना, वो भी जघन्य करेगा, फिफ्टी नाइन पर आए अभी हम, देवगति चतुष्क का देख लिया हमने 59 पर, पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि है, कारमान का योग में तो कितना भी संक्लिष्ट क्यों ना नरक गति तो नहीं बंधेगी, हाँ तो तिर्यंच गति बंधेगी, आप पंचेंद्रिय जाति बंधेगी क्यों कहा, ना फिर घोटाला कर रहे हैं हम, पंचेंद्रिय जाति के साथ सन्निकर्ष देख रहे हैं, यहाँ आपको जाति नाम कर्म का विचार करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि एकेंद्रिय सॉरी मनुष्य और तिर्यंच सर्व संकलेश में तिर्यंच जाति के साथ वो एकेंद्रिय सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंद करेंगे, यहाँ पंचेंद्रिय का जो जघन्य बंध है वो तो देवनार की मिथ्या दृष्टि है सर्व संकलिष्ट वाले, देखो यहाँ तो देखे तिर्यंच गति पुण्य संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त विहाय गति अस्थिर आदि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त प्रकृति है, वो मिथ्या दृष्टि सर्वसंकलेश वाला देवनारकी को बंधेगी, वो तो देखेंगे ना अभी, अभी ये तो सर्व संकलेश वाले हो गए, अभी सर्व संकलेश में तीर्यं जगति वगैरह ये जो अप्रशस्त प्रकृति है वो तो मैक्सिमम बंधेगी, यानी वो तो उत्कृष्ट बंधेगी। यहाँ तो जगन्य के साथ कर्म कंपेयर करेंगे तो अनंत गुणा कहेंगे, केवल वहां अस्थिन आदि छह को लिया है वो नियम से बंधेगी क्योंकि सर्व संकलेश है, परंतु इनका अपना जघन्य मध्यम परिणाम में होता है वो यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेगा। समझ में आती है सब बातें? देखो संस्थान हो सहनन हो ये मध्यम परिणाम में जघन्य बनते हैं, और यहाँ वो सर्व संकलेश वाला जीव है इसलिए वो अनंत गुणा का। औदारिक शरीर आदि का नियम से बंध करता है, क्योंकि तीर्यंज गति बंध रही तो औदारिक शरीर नियम से बंधेगी, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है। और यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। आदि का कहने से औदारिक शरीर तेजो शरीर कार्मान शरीर अंगोपांग वगैरह सब ले लेना, क्योंकि पंचेंद्रिय जाती है तो अंगोपांग नियम से बंधेगा, नियम से बंधने वाली है ना वो शरीर आदि लेना, आदि में सब ले लेना यहाँ पर, मैंने वो त्रस्त चतुष्क वगैरह सब लेना। तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। उद्योत का कदाचित बंद करता है, अब ये सर्व संकलिष्ट वाला है, उद्योत तीरंज गति के साथ बन सकती है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगण्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार औदारिक अंगोपांग और त्रस प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। किसमें लिया? कर्मण का योग में लिया। वो जो हमने औदारिक अंगोपांग और त्रस की बात है सारी पंचेंद्रीय जाति की बात अलग अलग देखी थी, वो तो पंचेंद्रीय तीरंज अपर्याप्त में जैसे देखा था ना, वैसे हमने कल बहुत चर्चा की थी ना उसमें, उसको पहले लिया कि उसको बाद में लिया, वो कौन से मार्गणा में था वो कल हमने जो औदारिक शरीर अंगोपांग और पंचेंद्रिय जाति, हाँ भवनवासियों में था शायद, भवनवासियों में वो था, वहां हमने चर्चा की थी उसके, यहाँ वो बात नहीं है। फिर से वो तो नियम से बनती है ना, क्या कहा? देखो देखो औदारिक शरीर आदि में मिला कि नहीं वो त्रस आदि, देखो आप कर्मण का योगी की बात कर रहे हैं, फिर से सुनना, औदारिक शरीर आदि में किस किस को लिया? जो देखो कर्मण का योग वाले औदारिक शरीर ही बांधेंगे कि नहीं अति संकलेश में, क्योंकि वो देव बांधता है, सॉरी समय दृष्टि जो मनुष्य बांधेगा देवगति की उसकी बात छोड़ना है, पर वो संकलेश वाला नहीं है जीव, तो संकलेश में क्या बांधेंगे? चारों गति के जीव औदारिक शरीर को बांधेंगे। यहाँ पंचेंद्रीय जाति के साथ सन्निकर्ष लग रहा है, तो औदारिक तेजस कारमाण अगुरलोक वगैरह वो सभी कैसे बांधेगी? जघन्य बांधेगी, जघन्य अजघन्य बांधेगी अभी, परंतु त्रस का जघन्य कौन करेगा बोलो? पंचेंद्रिय जाति के साथ, फिर सुनो, पंचेंद्रिय जाति के साथ त्रस बनती है वो जघन्य बंधेगी, परंतु अन्य मनुष्य और तीर्यंच बांधेंगे तो मध्यम परिणाम में बंधेंगे, ख्याल में? वो उनके लिए मध्यम परिणाम में वो जघन्य होगा, उनके लिए अलग बात होगी। इसीलिए कहा उदारी कांगो पावर तरस ऐसा, ये पंचेंद्रिय के समान उसका सन्निकर्ष ऐसा जानना चाहिए। उनका भंग पंचेंद्रिय जाति के समान होगा, बादर पर्याप्त प्रत्येक का, उसके साथ एकेंद्रिय जाति नहीं बंधेगी, सहनन नियम से बंधेगा, विहाय गति बंधेगी, तो उसका सन्निकर्ष ऐसा कैसा होगा? नहीं समझे आप? नहीं समझ में? फिर से, पंचेंद्रिय जाति के समान सन्निकर्ष किसका है? तो त्रस का है। तो त्रस को लिखो वहां पर, त्रस का जघन्य बंद करने वाला जीव, तीरियन जगति उंड संसान, ये इस तरह से नियम से बांध रहा है, ऐसा लिखो आप, वो तो चल जाएगी ना। त्रस का जघन्य कौन कर रहा है? देव और नारकी करे। अवदारी कंगोपांग का जघन्य कौन कर रहा है? देव और नारकी। तो आपने, आपका प्रश्न ये था, इसमें बादर पर्याप्त और प्रत्येक को क्यों नहीं लिया? तो त्रस का बंद करने वाला नियम से पंचेंद्रिय जाति अवदारी कंगोपांग ये सब बांध रहा है, परंतु बादर का जघन्य बंद करने वाला जीव क्या क्या बांध रहा है बोलो अभी? आप ही स्वाद, बादर का सन्निकर्ष आप कहो। पर एकेंद्रिय बांधेगा कि नहीं, कितना करता है उसका सवाल नहीं है। जैसे औदारी कंगोपांग के साथ एकेंद्रिय जाति वगैरह ली थी क्या? यहाँ पर सहनन लिया था ना, अभी बादर के साथ सहनन का नियम है, तो पंचेंद्रिय के समान सन्निकर्ष कैसे कहेंगे उसका? क्योंकि बादर पर्याप्त और प्रत्येक के साथ तीरियन जगति तो बांधेगी, एकेंद्रीय जाति भी बंधेगी, पंचेंद्रीय जाति भी बंधेगी, तो सब वो सहनन वगैरह सब वो ऑप्शनल में चले जाएंगे, तो उसका कथन ऐसा होगा क्या? ये मेरा प्रश्न है। ख्याल में आती है अभी कंफ्यूजन कहां था आपका? इसलिए त्रस के चतुष्क यहां नहीं लिए, क्योंकि अन्य तीन तो एकेंद्रीय जाति के साथ भी बनते हैं। औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी औदारिक शरीर को लिया, ऊपर अंगोपांग था इसलिए वो त्रस और पंचेंद्रिय ही बांधता था, यहाँ औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, तीरियन जगति क्योंकि ये संकलेश वाला है, सर्व संकलेश वाला है, चारों गति के जो इसको जघन्य बांधेंगे, तो तीरियन जगति बांधेंगे सब जीव, कुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, ये सब अप्रशस्त प्रकृति वाली, तीरियन जगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। फिर से सुनना है इसको, देखो, तीरियन जगति गत्यानुपूर्वी तो समय सॉरी सातवें नरक के नारकी को कारमान का युग में जघन्य है, यहाँ वो अनंत गुणा है। उंड संस्थान अस्थिर आदि पांच मध्यम परिणाम में है, यहाँ वो अनंत गुणा है। देखो अस्थिर आदि पांच लिए, लक्ष्मी किसको छोड़ा? हाँ, दुस्वर को, यानी स्वर को छोड़कर, क्योंकि एकेंद्रिय भी बंधेगी यहाँ पर, मनुष्य और तीर्यंच सर्व संकलेश में एकेंद्रिय का सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंद करेंगे, तो वहां स्वर का कोई सवाल नहीं है, तो स्वर बिना यहाँ पर अस्थिर आदि पांच लिए जो अनंत गुणा अधिक होता है। अब एकेंद्रीय जाति कदाचित बंधने वाली है, अभी एकेंद्रीय जाति कदाचित बंधेगी, तो एकेंद्रीय जाति कदाचित बंधेगी तो स्थावर कदाचित बंधेगा, और पंचेंद्रीय जाति कदाचित बंधेगी तो अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर बंधेगा। इसलिए सभी प्रकृतियां कैसी ली? कदाचित में ली, तो एकेंद्रीय जाति, परंतु अप्रशस्त वाली कदाचित ली है, तो एकेंद्रीय जाति अप्रशस्त विहाय गति स्थावर और दुस्वर का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। कदाचित लिया तो इसके प्रतिपक्षी भी बंधेंगे, तो पंचेंद्रिय जाति औदारी कंगोपांग आतप उद्योत और त्रस चतुष्क का कदाचित बंद करता है। ये सर्व संकलेश वाला जीव लिया,
यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। सर्वसंक्लेश है इसलिए यहाँ पर वो सुस्वर वगैरह वो नहीं लेना है, अकेला दुस्वर ही ले लिया यहाँ पर। तो जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तेजस शरीर कार्मण शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष, ये कैसी प्रशस्त प्रकृतियां है, सर्वसंक्लेश में वो भी जघन्य बनती है। तो तेजस शरीर कार्मण शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष अगुरु लघु त्रिक और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इन सब यानी वो प्रशस्त प्रकृति उसको ले लिया, किंतु इनमें से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष प्रकृतियों का नियम से बंद करता है। किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये स्थावर चार क्यों नहीं लिया? स्थावर लिया है, ऊपर स्थावर लिया है, कदाचित बंद करता है क्योंकि औदारिक शरीर का जघन्य है तो मनुष्य और तीर्यंच स्थावर चतुष्क को बांधेंगे ना। परंतु सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का वहां अनंत गुणा होता है, वो लेना पड़ेगा वहां पर। देखो औदारिक मिश्र निकालो क्योंकि बांधने वाले मनुष्य तीर्यंच ही है ना। नहीं वो हम किसके साथ ले, जरा सुनो घाई मत करो। किसका बंद कर रहे थे? वो औदारिक शरीर का जघन्य है ना। गति हो गए तीर्यंच अपर्याप्तकों के समान बताए औदारिक शरीर का 45 पेज। निकालना औदारिक मिला क्या? औदारिक शरीर का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाली 95 नंबर का पॉइंट। तीर्यंच गति एकेंद्रीय जाति हुंड संस्थान तीर्यंच गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त वर्ण चतुष स्थावर आदि चार लिया और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। अब यहाँ हमें तो कदाचित में रखना है उसको, तो नियम से में देखो अपना पेज नंबर 60 के साथ कंपेयर करो। तीर्यंच गति हुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष तीर्यंच उपघात अस्थिर आदि पांच यहाँ पर भी लिए, वो नियम से लिए अनंत गुणा लिए यहाँ पर भी वो उसको इंक्लूड किया। परंतु वो बांधने वाले वहां औदारिक मिश्र वाले थे और यहाँ बांधने वाले चारों गति के हैं, इसलिए एकेंद्रीय जाति अप्रशस्त विहाय गति स्थावर चतुष्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर वहां थावर आदि चार लिखा था, देखो ये रेफरेंस हुआ हमारा पेज नंबर 60 के लिए। थावर आदि चार यहाँ पर भी औदारिक के जघन्य के साथ एक इंद्रिय अपसत्त सावर चतुष्क लेना पड़ेगा, सिया में रखना है उसको। थावर के बाद चार लिखना है, बस इतना है, यानी सावर चतुष्क होना चाहिए था। क्योंकि बनती तो है ना मनुष्य तीर्यंचों की, उसका कहीं अन्यत्र कथन है ही नहीं है, तो यहीं पर वो कदाचित में लेना पड़ेगा। और बनती है तो मध्यम परिणाम में जगन है, तो यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। स्थावर के आगे चतुष्क लिखो, ये कहां तक आए हम? अभी हमने जो सुधारा ना, उसके बाद हमने पंचेंद्रिय जाति वगैरह देखे, वो भी कदाचित में लिया, और वो जगन्य भी होगा अजगन्य भी होगा। और तेजस कारमान प्रशस्त वर्ण चतुष्क ये जो है ध्रुवबंदी है, वो नियम से बंधेगी, पर प्रशस्त है वो, तो वो जगन्य भी बंधेगी अजगन्य भी बंधेगी। नीचे से चौथी पांचवी लाइन है, यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष, सब यानी वो प्रशस्तों का, किंतु इनमें से किसी एक के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव शेष प्रकृतियों का नियम से बंध करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये हो गया अवतारिक शरीर का जगन्य। हमारी मार्गणा है कारमान का योग वालों की। तीर्थंकर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, मनुष्य गति पंचक का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुना अधिक होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कौन से गति वाले करेंगे जो कारमान का योग में, पहले ये नक्की करते हैं। देव में जो उत्पन्न हुआ है, नरक में उत्पन्न हुआ है, या मनुष्य में, तो जो देव और नारकी जो है वो मनुष्य गति बांधेंगे, और मनुष्य है वो देव गति बांधेंगे। परंतु यहाँ तीर्थंकर का जगन्य हो रहा है, वो जीव मनुष्य गति पंचक का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि मनुष्य गति का अपना जगन्य है मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम में करेगा, और यहाँ है सम्य दृष्टि है। बोले सम्यक दृष्टि के लिए वो संकलेश है, परंतु मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा यह अनंत गुणा है, इन इसका अपना जगन्य जो है वो तो मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम। वहां जगन्य, यहां वो अनंत गुणा अधिक बन देगा। अब देवगति चतुष्क का कदाचित बंद करता है, परंतु देवगति बांधने वाला तो और देवगति का जगन्य है, ये सम्यक दृष्टि है तीर्थ, और देवगति सम्यक दृष्टि बांधता है। यहाँ मनुष्य गति तो मिथ्या दृष्टि भी बांध रहा था कारमान का योग में, इसलिए उसको मध्यम परिणाम में जगन्य बताया था, परंतु देवगति सम्यक दृष्टि को ही बनती है कारमान का योग में, इसलिए यहाँ उसका भी जगन्य हो सकता है। इसलिए देवगति चतुष्क का कदाचित बंध करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। पंचेंद्रिय जाति आदि का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का हमने देखा था जघन्य अनुभाग बंद सर्व संकलेश वाले देव नारकी करेंगे, और यहां पर वो अनंत गुणा अधिक बंधेगा क्योंकि ये सम्य दृष्टि जीव है। ये मार्गणा हो गई हमारी, योग मार्गणा कंप्लीट होती है। अब यहां वेद मार्गणा की बात चलेगी, उसमें पहले स्त्री वेदी की बात करते हैं। तो स्त्री वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान है, इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अभी स्त्री वेदी कब तक है? जब तक वेद का उदय है। तो वेद का उदय है वहां तो क्रोध मान मायलोभ किसी के भी बंधे भी च्युति नहीं हुई है। तो वहां पर स्त्री वेदी जीवों में क्रोध संज्वलन का जघन्य अनुभाग करने वाला जीव तीन संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंद करता है। जब तक स्त्री वेद है तब तक पुरुष वेद का भी बंद होगा। यानी स्त्री वेद के अंतिम समय में वहां क्या पोजीशन है? पुरुष वेद का बंद हो रहा है और क्रोध चार संज्वलनों का हो रहा है। परंतु वो चार संज्वलन और पुरुष वेद में से एक प्रकृति ली, उसके साथ सन्निकर्ष घटित कर रहे, इसलिए अन्य तीन संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंद करता है, जो नियम से जघन्य होता है। सर्वत्र जघन्य अजघन्य का विकल्प था, यहां जघन्य ही क्यों लिया? लक्ष्मी, सबको जघन्य क्यों कहा? हानवी गुणस्थान में अभी यहां से सबका समान परिणाम होगा, यानी इवन अनुभाग बंध का परिणाम भी समान है। इसलिए कहते नियम से जघन्य होता है। चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह सहनन, चार अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर आदि चार और सिरादि छह युगल का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। देखो ये चार जाति ले लिया, पंचेंद्रिय जाति नहीं लिया, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का जघन्य जो है वो तो देव करेगा और मनुष्य ने भी करेंगे ना नरगति के साथ, सर्व संकलेश में जघन्य होगा। देवी है वो तिर्यंच गति बांधेगी। इसीलिए पंचेंद्रिय बिना लिया ना, और देवी चार जाति को बांधेगी नहीं ना, तत्प्राय संकलेश मध्यम नहीं। पंचेंद्रिय को छोड़ा है यहां, इतना समझ लो। अभी दूसरे विकल्प मत करो, यहां जो विषय हो रहा है उसके बारे में सोचो। फिर से जघन्य, अभी यहाँ जो लिखा है वही तो मैं बात बात बताती हूँ। यहाँ पंचेंद्रिय को छोड़कर चार जाति की बात हो रही है, पहले ये नक्की करो। पंचेंद्रिय जाति की बात अलग बताएंगे। देखो चार गति, अभी स्त्री वेदी है, अन्यत्र हम तिर्यंच गति को जघन्य कहाँ लेते हैं? या तो नरक में लेते हैं या जहाँ बादर एकेंद्रिय आता है अग्निवायु वहां लेते हैं। स्त्री वेदी कहने से वो सब रूल आउट हो गए, तो यहाँ तिर्यंच गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम में होगा। तो इसलिए सबका जघन्य जो है उसके साथ ये मध्यम परिणाम वाले अगर बनते हैं तो जघन्य भी अजघन्य भी होंगे। इसके साथ प्रशस्त बनते हैं या अप्रशस्त बनते हैं वो अनंत गुणाधिक बन देंगे। अब पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान कहा। जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहते हैं तो ना वो सातवें नरक घटित होता है ना अग्नि का एक वायु का एक घटित होता है, इसलिए वहां पर भी तिर्यंच गति को भी मध्यम परिणाम में लिया था। पंचेंद्रिय जाति के अभी ऊपर छोड़ी ना, पंचेंद्रिय जाति छोड़ी थी, यहां उसकी बात करें तो पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अब यहां हमारी मार्गणा देवी की नहीं है, हमारी मार्गणा तो स्त्रीवेदी की है, तो स्त्रीवेद वाले नरगति के साथ पंचेंद्रिय का जघन्य करेंगे, यही तो मैं कह रही थी आपको। तो पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव नरगति, पुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष, नरगत्यानुपूर्वी, उपघात, सारे अप्रशस्त लिए ना, क्योंकि सर्व संकलेश वाली जो है मनुष्यनी तिर्यंचनी, तो उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिरादि छह का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि इनका तो यहाँ उत्कृष्ट बंद हो रहा है, उनके अपने जघन्य से ही अनंत गुणा अधिक है। वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मान शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघु त्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है। ये नियम से है परंतु प्रशस्त वाली है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार जैसे पंचेंद्रिय जाति का हमने देखा था ऐसा ही वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग और त्रस की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रशस्त प्रकृति है और इसके जगन्य के साथ बनने वाली, हाँ, जो वैक्रिक शरीर, अंगोपांग और त्रस को ले लेना, तो उसमें से जो प्रशस्त है उसको लिया हमने। परंतु यहाँ तेजस कारमान को नहीं लेना है, क्योंकि तेजस कारमान का जघन्य तो अन्य जाति के साथ भी हो सकता है ना, एक इंद्रिय जाति के साथ भी हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ा। यहाँ पर केवल वैक्रिक शरीर, अंगोपांग और त्रस को ले लिया, क्योंकि स्त्री वेदी में तेजस कारमान का तो एक इंद्रिय जाति के साथ भी जघन्य होगा, पंचेंद्रिय जाति के साथ भी जघन्य होगा, क्योंकि देवियां हैं वो एक इंद्रिय बादर पर्याप्त वगैरह को जगन्य बांधेगी। तो अवदारिक शरीर आतप और उद्योत का भंग सौधर्म कल्प के समान है। अभी हम देखते हैं अवदारिक शरीर का जगन्य हो रहा है, स्त्री वेदी में अवदारिक शरीर का जगन्य है, यानी देविया है, पीतलेशा वाली है, यानी वो सौधर्म कल्प के समान उसका भंग है। तो अवदारिक शरीर का जगन्य करने वाला, क्योंकि देखो क्या क्या बांधेगी, एक केंद्रीय जाति वाले बांधेगी, हाँ, तो तीरंज गति बांधेगी, एक केंद्रीय जाति बांधेगी इस तरह से। चौपन पाना और हमने लिख के रखा था लास्ट टाइम, 54 पेज लिखा है। वो सौधर्म की बात थी ना, बहन वासी व्यंतर वगैरह की बात थी। तो देखो औदारिक शरीर का जघन्य कर रहा है, वहां तीर्यंच गति, एक इंद्रिय जाति, मुंड संसार सारे अप्रशस्त कर्म लिया, अस्थिर आदि छ पांच जो नियम से है और अनंत गुणाधिक है। तेजस कारमान वगैरह जो है बादर पर्याप्त प्रत्येक नियम से है, परंतु वो जघन्य भी और अजघन्य भी है। आतप उद्योग कदाचित है और वो भी जघन्य अजघन्य है, जघन्य अजघन्य ले, अनंत गुणा नहीं लिया, हाँ, वो प्रशस्त प्रकृति है ना। और मनुष्यनी और तीर्यंचनी औदारिक शरीर का जघन्य नहीं बांध सकते, क्योंकि वो सर्व संकलेश में नर गति बांधेंगे, इसलिए इसका जघन्य बांधने वाले देवियां ही होंगी। अब औदारिक अंगोपांग के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीर्यंच गति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, हुंड संस्थान, असंप्राप्त सृपाटिका सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात, त्रस बादर प्रत्येक, अस्थिरादि पांच और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। देखो अभी ये कौन सा लिया, तत्प्रायोग संकलेश वाला लिया, क्यों ऐसा लिया, देखो देखो अभी, हाँ, पर अवदारिक अंगोपांग द्विंद्रिय के साथ बनता है तो देवी है वो पंचेंद्रिय के साथ भी बांधेगी। हमारी मार्गणा कौन सी है, वहां तो केवल हम भवनवासी को लिया था, यहाँ हमारी मार्गणा श्रीवेदी की है, श्रीवेदी में मनुष्य नी तीर्यंचनी भी आ गई, देवी है वो पंचेंद्रिय पर्याप्त के साथ बंद करेगी और मनुष्य नहीं तीर्यंचन है वो द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ बंद करेगी। इसलिए देखो इसमें कि किसको छोड़ा है तो अस्थिर आदि पांच को ही छोड़ा, पांच को लिया, स्वर को छोड़ गया था। क्यों? क्योंकि वे द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ स्वर नहीं बंधेगा, इसलिए उसको केवल पांच को लिया यहां पर। परंतु इन सब में तो सहनन नियम से बंधेगा, पंचेंद्रिय बंधेगी, द्विंद्रिय बंधेगी और संप्राप्त रूपाटी का सहनन नियम से बंधेगा। ये सारे नियम से बंधने वाली है, त्रस ही है, बादर ही है, प्रत्येक ही है। परंतु यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का विकल्प छोड़ दिया है, क्योंकि देवी है वो पर्याप्त को बांधेंगे, मनुष्य नहीं तीर्यंजी अपर्याप्त को बांधेंगे, इसलिए सब लिया तो अनंत गुणा लिया, क्योंकि ये सारी अप्रशस्त प्रकृतियां है और औदारिक अंगोपांग वो प्रशस्त है। तत्प्राग्य में वो जघन्य हो रही थी, वहां ये अप्रशस्त प्रकृतियां अनंत गुणा अधिक बनती है। आप कहेंगे वो प्रशस्त प्रकृतियां भी लिए ना, त्रस बादर प्रत्यय किए तो प्रशस्त प्रकृतियां है, उसको भी अनंत गुणा क्यों कहा? बोलो अभी इसका कारण है कि यहाँ तत्प्रायोग संकलेश है। त्रस माधर प्रत्येक नरगति के साथ सर्व संकलेश में जघन्य बंधेगी, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक होगी। अब देखो ऑप्शनल में क्या रखा है, देखो द्विंद्रिय जाति जो मनुष्य नहीं तीरंच नहीं बांधेगी, पंचेंद्रिय जाति देवी बांधेगी, परघात उच्छ्वास क्योंकि यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का विकल्प है, कदाचित है, इसलिए परघात उच्छ्वास को भी कदाचित में रखा। उद्योत वो तो बनती है तो नहीं बनती है, दोनों हो सकते हैं। अप्रशस्त विहाय गति वही द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी, पंचेंद्रिय के साथ बंधेगी, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ले लिए। दुस्वर वो पंचेंद्रिय के साथ बंधेगी, द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी, इसलिए इनका कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये समझ में है ना उसका कारण क्या है? तेजस शरीर और कारमान शरीर का भंग ओग के समान है, यानी फिर से देवी पंचेंद्रिय का बंद करती है। हाँ वहाँ अरे जघन्य जो हो रहा है ना, दो बातें बताई थी अथवा कर पहले देखा था ना कल, इसलिए देवी में औदारिक अंगोपांग के साथ पंचेंद्रिय जाति का अनंत गुणा अधिक देखा था हमने कल, आपको याद होगा तो, क्योंकि देवी के लिए वो तो मध्यम परिणाम में है, यहाँ तो अनंत गुणा बंधेगी। और द्विंद्रिय जाति का भी मनुष्य तिरंज के लिए मध्यम परिणाम में जगह नहीं, वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब फिट बैठ रहा है ना यहाँ पर? हाँ। अभी आगे बढ़ते, तेजस और कारमान शरीर का भंग ओग के समान है, क्योंकि तेजस और कारमान जो है वो सर्व संकलेश वाले को जघन्य बंधेगी। तो तेजस कारमान का जघन्य के साथ मनुष्य नी तीर्यंच नी नर गति को बांधेगी, और देवी है वो एकेंद्रीय जाति का बंद करेंगी। हाँ इतनी विशेषता है कि औदारिक अंगोपांग और असंप्राप्त रूपाटी का सहनन को छोड़कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि नरगति के साथ भी ये नहीं बंधेगी और देवी जो एकेंद्री का बंद करते उसके साथ भी ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। इसलिए ओग में इनका बंध तो था, पर यहां तो हम नहीं कहेंगे, उग में भी उसको कदाचित में रखा था, यहाँ तो बिल्कुल बंधेगी नहीं ऐसा लेना है। 62 पेज पर आते हैं अभी। तो अवतारी कंगोपांग और असंप्राप्त सुपर का छोड़कर सहनन को कहना चाहिए। हाँ, अब तेजस और कारमान के साथ की बात चल रही है ना, उसका सन्निकर्ष चल रहा है, और मार्गण हमारी स्त्री वेदी की है, उसमें पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, अब ये कदाचित वाले हैं, क्योंकि सन्निकर्ष हमारा तेजस के साथ चल रहा है, तेजस कारमान, वो सर्वसंकलेश में जघन्य हो रहा है, तो मनुष्य ने तीरियंचिनी नरगति बांध रहे, उसके साथ वैक्रिक शरीर बांधेगा, अंगोपांग बांधेगा, पंचेंद्रीय जाति तो बंधेगी, पन देवी है वो एकेंद्रीय जाति बांधेगी, इसलिए इन सबको कदाचित में रखा। तो पंचेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, आतप, उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। यहाँ पर पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कहाँ लेना है, नरक गति के साथ, तो यहाँ वो जघन्य भी बन सकता है। एकेंद्रिय जाति और स्थावर का कदाचित बंद करता है, क्योंकि तेजस कारमान का जघन्य हो रहा है ना, तो देवी एकेंद्रिय स्थावर का बंद करेगी, परंतु उनका तो उत्कृष्ट होगा, वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, तो वो कदाचित बनने वाली है जो अनंत गुण अधिक होता है। कारमान शरीर आदि और निर्माण का नियम से बंद करता है, क्योंकि तेजस शरीर के जघन्य के साथ बात हो रही है, तो तेजस के साथ कारमान भी बंधेगी। हाँ, तो किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, इन्हें प्रशस्त वर्ण चतुष्क है, बादर पर्याप्त प्रत्येक है, अगुर लघु त्रिक है, वो नियम से बनती है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ना देवी है वो अपर्याप्त कैसे बांधेगी, अगुर लघु त्रिक ही लेना है। लास्ट टाइम बताया था, लिख के भी रखा था, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तेजस शरीर आदि का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी जो अभी हमने तेजस शरीर, कारमन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, गुरु लघु त्रिक, बादर पर्याप्त प्रत्येक, वो सब ऐसा ही समझना, जो नियम से बंधने वाली जो है ना प्रशस्त प्रकृतियां, उनका आपस में ऐसा ही सन्निकर्ष होगा, यानी वो नरगति के साथ भी बंधेगी और एक के साथ भी बंधेगी, यानी तिरंज गति के साथ भी बंधेगी, यानी सर्व संकलेश में जो प्रशस्त प्रकृतियां नियम से बंधने वाली, उनका भी ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। तो एक का जघन्य है तो दूसरे का जघन्य भी अजघन्य भी होगा और वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होगा। ये हो गया, अभी नीचे से दूसरी लाइन, आहारक द्विक, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और तीर्थंकर का भंग ओघ के समान है। देखो, आहारक द्विक बांधने वाला स्त्री वेदी है, तो कौन है ये, उसका जघन्य बांधने वाला अप्रमत्त वाला छठे के सन्मुख वाला है, वो जघन्य बांध रहा है, तो वहां क्या क्या बन रही है, देवगति का बंध कैसे होगा, बोलो, देवगति वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां कैसे बंधेगी, जघन्य कैसे होगी क्योंकि स्त्रीवेदी में देवगति का बंध तो मिथ्या दृष्टि करेगा मध्यम परिणाम में, और यहाँ वो अनंत गुणाधिक होगा, सारे प्रशस्त प्रकृतियां, हाँ, और अप्रशस्त प्रकृतियां भी अपूर्व करण में जो जघन्य है वो यहाँ पर अनंत गुणा बंधेगी। हाँ, और यहाँ तो आहार द्विक है तो अस्थिर आदि बंधेगी, क्योंकि छठे गुण स्थान छठे के सन्मुख है, अस्थिर नहीं स्थिर बंधेगी, वो भी अनंत गुणा बंधेगी क्योंकि मध्यम परिणाम में वो जघन्य बनती है। अप्रशस्त वर्ण चतुर्थ और उपघात वो आठवें गुण स्थान में वो जघन्य बनती है, वहां पर प्रशस्त प्रकृतियां है, अनंत गुणा अधिक बंध रही है, केवल ये आपस में जघन्य भी अजघन्य भी बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओघ के समान है, श्रीवेदी है तीर्थंकर का जघन्य है वो नरक के सन्मुख वाले को होगा, वहां कैसे बंधेगी देवगति वगैरह, अनंत गुणा अधिक बंधेगी क्योंकि वो सम्य दृष्टि जीव है, और अप्रशस्त प्रकृतियां जो है वो भी अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब ये श्रीवेदी की हो गई बात। पुरुष वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग स्त्रीवेदी जीवों के समान है, वहां तो स्त्रीवेदी में जो ओघ से विशेषता थी वो बताया था, यहां पर भी जब तक पुरुष वेद का उदय है तब तक पुरुष वेद और चार संज्वलन बन रहे, तो जैसे स्त्रीवेदी में कथन किया वैसे यहां पर भी होगा। और शेष भंग ओघ के समान है, केवल क्या लेना है कि तो तीरंच गति को मध्यम परिणाम में लेना है, क्योंकि पुरुष जैसे श्रीवेदी में लिया था हमने वैसे यहां पर भी लेना, परंतु श्रीवेदी में क्या देखा था हमने, पंचेंद्रिय जाति का जो जघन्य कर रहा है वो जीव, तो श्रीवेदी में केवल नरक गति बांध रहा था। अब पुरुष वेदी में क्या लेंगे, हम नरक गति भी लेंगे और तीरंज गति भी, क्योंकि पुरुष वेदी जो सनत कुमार आदि देव है वो पंचेंद्रिय जाति हाँ तीरंज गति के साथ करेंगे, इसलिए क्या कहा, इतनी विशेषता है कि तीरंज गति द्विक की परिवर्तमान प्रकृतियों में परिगणना करनी चाहिए, यानी चारों गतियों का जघन्य जो है उसमें तीरंज गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम में ले लेना, तो उसके अनुसार हम उसको डिराइव करते हैं। तो उसके उसके जघन्य के साथ वो जो छह संस्थान छह सहनन अस्थिर आदि वगैरह वो सब जघन्य भी अजघन्य भी हो जाएंगे। अब नपुसक वेदी जीवों में, नपुसक वेदी कहने से अभी मनुष्य है तीरंच और नारकी है, इन तीनों को लेना। तो नपुसक वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, मोहिनी में भी ऐसा लेना है, जब तक नपुसक वेद का उदय है तब तक पुरुष वेद और चार संज्वलन बन रहे तो वहां उसको ले लेना, एक संज्वलन का जघन्य है तो अन्य अन्य सबका जघन्य ही होगा। अब नाम कर्म की बात करें, चार गति, अब जब नपुसक वेदी में हम तीरंज गति लेते हैं तो सातवें नरक में उसका जघन्य लेना, चार जाति, छह संस्थान छह सहनन चार अनुपूर्वी दो विहाय गति स्थावर आदि चार और सिरादि छह युगल का भंग ओघ के समान है, उसके स्वामी तो हमें मालूम है ना सबके, चार गतियों में तीरंज गति का ही अलग बताता है, बाकी सब मध्यम परिणाम में ही है, तो मध्यम परिणाम में जो जघन्य बनती है उसके साथ प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो वो अनंत गुणा बनती है, केवल मध्यम वाली उसके साथ जघन्य अजघन्य बन सकती है। अब नपुसक वेदी में पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब नपुसक वेदी मनुष्य तीरंज है वो नरक गति बांधेंगे और नारकी वो तीरंज गति का बंद करेंगे, इसलिए दो गति का बंद होगा, कदाचित में ले लेंगे उसको, पर ये दोनों गति एक तो मध्यम परिणाम में जघन्य है और एक करण परिणाम में जघन्य है, और पंचेंद्रिय जाति का जघन्य संकलेश में होगा, तो ये सब यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेंगे। वह जीव दो गति कदाचित में, क्योंकि नरक गति और तीरंज गति का ऑप्शन है, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, क्योंकि वो नरक गति के साथ नहीं बनता तीरंज गति के साथ बनता है, दो आनुपूर्वी का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि वो सर्व संकलेश वाला जीव है। इसलिए दो शरीर, क्योंकि दो गति का विकल्प है तो औदारिक शरीर वैकरिक शरीर दोनों का विकल्प होगा, दो अंगों पांव और उद्योत का कदाचित बंद करता है। परंतु ये कैसी प्रशस्त प्रकृतियां हैं, पंचेंद्रिय जाति के समान। तो यदि बंद करता है वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु त्रिक, द्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। अगुरु लघु को इसके उपघात को हमने ऊपर लिखा ही लिया था, है ना, नियम से वाला लिया था ना ऊपर का, नहीं लिया था। अप्रशस्त को बाद में लेंगे, नियम से वाले बाद में लेंगे जो अनंत गुणा अधिक है। यहाँ प्रशस्त वाले नियम से लेंगे, वो जगन्य भी होता है अजगन्य भी होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति के साथ लगा रहे हैं ना हम इसको। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 63। कुंड संस्थान, नरक गति बंद है या तीर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति का जघन्य है तो यह हुंड संस्थान ही बंदेगा। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात, अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि पंचेंद्रिय जाति बंद रही है, भले वो नरक गति हो तीर्यंच गति हो, तो ये तो सब नियम से बंदेगी बंदेगी, परंतु ये सर्व संकलेश वाला है। तो अप्रशस्त प्रकृतियां या अनंत गुणा अधिक बंदेगी, कि संस्थान वगैरह अस्थिर आदि तो मध्यम परिणाम में जगन्य थे और यह सर्व संकलेश वाला है। इसी प्रकार नियम से तंतु पतित तेजस शरीर आदि की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि जो पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त है उसके साथ नियम से बंधने वाली तेजस, कारमान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुलुगत्रिक, रस चतुष्क और निर्माण, इनका आपस में ऐसा ही तंतु वाला संबंध होगा। तो नियम से तंतु, तंतु है ना, जगन्य भी अजगन्य भी और छह स्थान पतित, तो तेजस शरीर आदि की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सिया तंतु पतित औदारिक शरीर आदि की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। वो कदाचित वाली में है ना, हाँ, क्योंकि जो नारकी है वो औदारिक शरीर बांधेगा, संप्राप्त सुरपाटी का बांधेगा, इस तरह से मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। किंतु इन्हीं में से किसी एक के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का कदाचित बंद करता है, जो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। किंतु इतनी विशेषता है कि हमने यहाँ चेंज किया था कुछ, किंतु इतनी विशेषता है क्योंकि किसमें औदारिक शरीर आदि की बात है ना, कि औदारिक उन्होंने क्या लिखा था, औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव औदारिक अंगोपांग का कदाचित, ये तो बात नहीं होती है क्योंकि बांधने वाला नारकी है, तो औदारिक शरीर के साथ अंगोपांग जरूर बांधेगा, इसलिए हमने उसको चेंज किया था। इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीर वहां बीच में डाला था और औदारिक अंगोपांग के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव उद्योत का कदाचित बंद करता है, ये बीच में डाला था हमने, औदारिक शरीर और अंगोपांग का बंद करने वाला जीव, क्योंकि जो शरीर बांधता है तो अंगोपांग नियम से बांधता ही बांधता है, क्योंकि यहाँ लिखा ना ऊपर, ऊपर जो लिखा था देखो, सिया तंतुपति औदारिक शरीर आदि, वहां औदारिक शरीर आदि जो लिया था वहां औदारिक अंगोपांग लिखा था, यानी अवधारिक शरीर, अवधारिक अंगोपांग और संप्राप्त सुपाटिका सहनन वगैरह वो सब उसको मैं कदाचित वाली प्रकृतियां ली थी ना वहां पर, जो नियम से बनती है इस तरह से। जो तंतुपति औदारिक शरीर वगैरह के आपस में ऐसा ही समझना चाहिए ऐसा लिखा था, परंतु उसका बंद करने वाला जीव उद्योत का कदाचित बंद करता है और शेष प्रकृतियों का भंग मनुष्यों के समान है। नपुंसक वेदी है ना, शेष प्रकृति में किसको लिया? आहार तीर्थंकर आतप। हाँ, किंतु आतप का भंग सामान्य तीर्यंचों के समान बताया, यानी आतप का जगन्य बंद करने वाला जीव ले लिया। नपुंसक वेदी है, आतप का जगन्य कर रहा है, वैसे मनुष्यों में सामान्य तीर्यंचों के समान बता ही देते हैं, पर मनुष्यों में विशेषता क्या है? आहार भी है, तीर्थंकर भी है, वो मनुष्यों में होगा, आतप का तो तीर्यंचों में भी होता है, इसलिए सामान्य तीर्यंचों के समान बता दिया। यानी आतप है वो मनुष्यों में भी घटित होता है और आहार तीर्थंकर केवल मनुष्यों के में है। अपगत वेदी जीवों में, ये तो वेद मार्गणा में ना अपगत वेदी तक आ गए अभी हम। पांच ज्ञानावरण अब यहां बंधने वाली लेना है, तो पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय का नियम से बंद करता है, जो नियम से जघन्य होता है। तात्पर्य कि इन 14 प्रकृतियों में से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का नियम से जघन्य अनुभाग बंद करता है। ये तो बताने की ऐसे सबको इकट्ठा नहीं है, पांच ज्ञानावरण का जघन्य नहीं होगा, यानी जैसे हाँ बाकी का जघन्य नहीं होगा, ये ओके समान कह देते थे ना, क्योंकि यहाँ परस्थान तो लगा नहीं रहे हम। हाँ, चार संजोलन का भंग ओघ के समान है। अब यहाँ तो होगा जहाँ क्रोध का जगन्य होता है, हाँ बाकी तीन का आनंद, क्योंकि वो एक एक अंतर्मूर्त के बाद बंध विच्छित्ति होती है, इस तरह से उसमें ले लेना है। और मार्गणा हमारी अपगत वेदी की है। जब हम क्रोध कषाय वाले जीव में देखा था तो सबका समान था, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान है। सात कर्मों में यह जो बंधने वाली ही लेना है, मिथ्यात्व अनंतानु बनती नहीं है, उसकी बात छोड़ देना। दर्शनावरण में छह ही दर्शनावरण का भंग बताना है, यानी जो एप्लीकेबल है वैसा लेना उसको। ख्याल में आती है बात यहाँ पर? मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये तो समय दृष्टि है, हाँ, परंतु मनुष्य गति बांधने वाला देवनार की है, और सर्व संकलेश में मिथ्यात्व के सन्मुख वाला वो जघन्य करेगा। वो पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्रषभ, नारा, सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये सारी प्रशस्त प्रकृतियां ली है। अगुर लघु त्रिक, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर आदि और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब यहाँ सर्व संकलेश वाला है ना मिथ्यात्व के सन्मुख, और क्या बंधेगा? अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति, क्योंकि तीन ही युगल है यहाँ जो प्रतिपक्षी वाले, बाकी तो सुभग सुस्वर वो तो बंद रहे थे, तो कहते ये बनती है नियम से, क्योंकि सर्वसंक्लेश वाला है जो अनंत गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार मनुष्य गत्यानुपूर्वी आदि चार की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। जो मनुष्य गति पंचक हम इकट्ठा लेते हैं ना, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, औदारिक शरीर है, औदारिक अंगोपांग है, और वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, उनका आपस में सन्निकर्ष ऐसा ही होगा। अब यही रुकते हैं हम। हाँ प्रश्न क्या? देव मनुष्य गति बांध रहे हैं। हाँ, देव समय दृष्टि मिथ्यात्व में जाएगा, बोलो। हाँ मिथ्यात्व में जाएगा तो डिपेंड्स ना, दोनों ही बन सकती है। संसाधन में शुरुआत में जो कंडीशन है वैसा तो है नहीं। अभी कल चर्चा करेंगे इस पर। कल चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हूँ।